ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। धादिंग की धुनीबेसी में सात वाहनों के एक आपस में टकराने से हुई दुर्घटना में 35 लोग हुए घायल, कुछ की हालात गंभीर। फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव को सफल बनाने का राष्ट्रपति पौड़ेल ने किया आह्वान। विज्ञान प्रविधि से संबंधित शैक्षिक तथा अनुसंधानमूलक संस्थाओं को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना होगा, शिक्षा मंत्री पुन का कथन। कांति राजमार्ग मरम्मत के लिए आज से 2 महीने तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा बंद। वैकल्पिक मार्ग प्रयोग करने का किया गया है आग्रह। और दक्षिण अफ्रीका में एक हॉस्टल में बंदूकधारी के हमले में 11 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत धादिंग की धुनीबेसी नगरपालिका वार्ड नंबर 6 चालीसे में 7 वाहनों के एक आपस में टकराने से हुई दुर्घटना में 35 लोग घायल हो गए हैं, उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई गई है। स्कूल बस सहित 4 बसें, 2 ट्रक और 1 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से यह हादसा हुआ है। घायलों में ज्यादातर स्कूल बस में सवार विद्यार्थी थे। चितवन में स्कूल बस में सवार 25 लोग, गोरखा से काठमांडू की तरफ आ रही बस में सवार 8, मोटरसाइकिल पर सवार 1 और डिब्बे लदे ट्रक पर सवार 1 सहित 35 लोग घायल हुए हैं, यह जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय ने दी। पुलिस के मुताबिक भारतीय नंबर प्लेट वाले डिब्बे लदे हुए ट्रक का ब्रेक फेल हो जाने के कारण उनसे अन्य वाहनों को टक्कर दी गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। घायलों का इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा कि सिर्फ पूर्वाधार निर्माण ही नहीं, नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार लाने वाला विकास आज की जरूरत है। आज ललितपुर के नवनिर्मित प्रशासकीय भवन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति पौड़ेल ने ये बात कही। इस बात का जिक्र करते हुए कि जनता की शिकायतों को सुनने, उन्हें संबोधित करने का दायित्व तो हर राष्ट्र सेवक का है, उन्होंने कहा कि प्रभावकारी सेवा प्रवाह और सुशासन की बहाली को लेकर राष्ट्र सेवक को सचेत रहना होगा। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री महावीर पुन ने कहा कि दीर्घ आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लिए विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रत्यक्ष रूप में अर्थतंत्र के साथ जोड़ना होगा। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट द्वारा आज ललितपुर में आयोजित 43वें वार्षिकोत्सव विशेष पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री पुन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में विज्ञान और तकनीक पीछे रह जाने के कारण अर्थतंत्र कमजोर हुआ, जिसके कारण समाज पिछड़ा रह गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान और प्रविधि से संबंधित शैक्षिक और अनुसंधानमूलक काम करने वाली संस्थाओं को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना होगा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री डॉ सुधा शर्मा ने कहा कि हर परिवार को ज्येष्ठ नागरिकों को सक्रिय जीवन यापन में सहयोग देना चाहिए। आज एशिया पैसिफिक जेरियाट्रिक नेटवर्क APGN सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ शर्मा ने स्वीकार किया कि देश की नीतियां कुछ हद तक ज्येष्ठ नागरिक मैत्री जरूर है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक रूप में कमजोर राष्ट्र होने के बावजूद नेपाल ज्येष्ठ नागरिकों के लिए भरसक उत्तम सेवा देने का प्रयास कर रहा है। सम्मेलन में नेपाल समेत 20 से अधिक देशों के विभिन्न रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक, ज्येष्ठ नागरिक वित्त अनुसंधानकर्ता और विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक सहभागी हैं। नेकपा एमाले के अध्यक्ष KP शर्मा ओली ने कहा कि पुराने दल समाप्त हो गया है या हो जाएंगे, ऐसा कोई न सोचे। आज च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी के मुख्य पत्र नवयुग ई बुलेटिन का शुभारंभ करते हुए अध्यक्ष ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में होना चाहिए। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा ने कहा कि पार्टी के आसन्न 15वें महाधिवेशन और चुनाव की तैयारी साथ साथ हो रही है। नेपाल प्रेस यूनियन सरलाही द्वारा आज मलंगमा में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में महामंत्री थापा ने ये बात कही। ये बताते हुए कि कुछ नेता महाधिवेशन के कारण चुनाव की तैयारी होने में आशंका जता रहे हैं, उन्होंने कहा कि दोनों ही काम साथ साथ आगे बढ़ाए गए हैं। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने कहा कि परिवर्तनकारी शक्तियों को एकजुट होने का विकल्प नहीं है। आज पार्टी के मध्य प्रदेश स्तरीय एकता संदेश सभा का जनकपुर धाम के तिरुतियागाछी में संबोधित करते हुए संयोजक प्रचण्ड ने कहा कि जेनजी पुस्ता के आंदोलन का मूल भावना देश में सुशासन समृद्धि एवं विकास है, इसलिए नेकपा दृढ़ है। उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार निर्माण में हुए नए समीकरण से नई संदेश मिली है बताते हुए कहा कि इस गठबंधन को अन्य प्रदेशों में विस्तार करने की आवश्यकता है। पार्टी के सह संयोजक माधव कुमार नेपाल ने कहा कि जेनजी पुस्ता द्वारा उठाए गए मांग के संबोधन करने के लिए युवा महिला ज्येष्ठ नागरिक तथा पिछड़े वर्ग को एकजुट होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने कहा कि निद्राजन्य विकारों स्लीप डिसऑर्डर्स के चुनौतियों से लड़ने में और भी सचेतना के साथ अनुसंधान करने की आवश्यकता है। आज काठमांडू में आयोजित नेपलीज सोसाइटी ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स के दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपराष्ट्रपति यादव ने कहा कि पिछले समय में व्यस्त जीवन शैली और स्वस्थ खानपान प्रविधि के बढ़ते प्रयोग लगायत के कारण से निद्रा संबंधी विकार बढ़ते जा रहा है, इसलिए ऐसी चुनौती को समय पर ही संबोधन किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव ने कल पद तथा गोपनीयता के शपथ लेंगे। 7 दल के 77 प्रदेश सभा सदस्यों के समर्थन में मुख्यमंत्री बने नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता यादव मध्य प्रदेश के 6वां मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री यादव के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हुआ है, ये जानकारी प्रदेश प्रमुख के कार्यालय ने दी। बता दें कि गठबंधन दल के कुछ मंत्री सहित पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने जा रहे हैं, ये जानकारी मुख्यमंत्री यादव ने रेडियो नेपाल को दी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ रामवरण यादव ने कहा कि नेपाल आंख के इलाज में गुणस्तरीय सेवा देते आ रही है। बीरगंज दृष्टि आंख नाक कान और गर्दन के अस्पताल के नवनिर्मित भवन के आज उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के उत्तरी राज्य से नेपाल के आंख का इलाज विशिष्टकृत और अव्वल है। प्रथम राष्ट्रपति यादव ने कहा कि चिकित्सक पैसा कमाने से ज्यादा मानवीय सेवा से प्रभावित होना चाहिए। कांति राजमार्ग पर मरम्मत संभार के लिए आज से 2 महीने तक बंद होने जा रही है। कांति राजमार्ग के विभिन्न खंड में सड़क विस्तार के लिए हर दिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी, ये जानकारी जिला प्रशासन कार्यालय ललितपुर ने दी। इसलिए सभी से वैकल्पिक मार्ग प्रयोग करने का आग्रह भी किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण अफ्रीका के एक होस्टल में मास शूटिंग में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार तड़के राजधानी पिटोरिया के पश्चिम में साल्सविले टाउनशिप में बंदूकधारियों ने एक जगह पर हमला कर दिया। इस हमले में 14 लोग घायल भी हुए हैं, वहीं 11 मृतकों में एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है। पुलिस प्रवक्ता ब्रिगेडियर एथलिंडा माथे ने कहा कम से कम 3 बंदूकधारी इस होस्टल में घुसे जहां कुछ लोग शराब पी रहे थे और उन्होंने धंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। माथे के मुताबिक कुल 25 लोगों को गोली मारी गई। इस हमले का मकसद अभी पता नहीं चला है और इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। धादिंग की धुनीबेसी में 7 वाहनों के एक आपस में टकराने से हुई दुर्घटना में 35 लोग हुए घायल, कुछ की हालात गंभीर। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव को सफल बनाने का राष्ट्रपति पौड़ेल ने किया आह्वान। विज्ञान प्रविधि से संबंधित शैक्षिक तथा अनुसंधान मूलक संस्थाओं को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना होगा, शिक्षा मंत्री पुन का कथन। कांति राजमार्ग मरम्मत के लिए आज से 2 महीने तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा बंद, वैकल्पिक मार्ग प्रयोग करने का किया गया है आग्रह। और दक्षिण अफ्रीका में एक हॉस्टल में बंदूकधारी के हमले में 11 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।